दिन भर तारीख 24 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को मलाल है अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण न रख पाने का।
इफ यू आस्क मी वेयर हैज बीन द वन एरिया वेयर आई फील दैट
भारतीय वित्तीय कोड के नए मसौदे से छिन सकता है रिजर्व बैंक गवर्नर के पद से जुड़ा एक अहम अधिकार। 26 जुलाई को है विजय दिवस, सुनिए करगिल की लड़ाई की कहानी विवेचना में।
उनके जो लॉजिस्टिक बेसिस के ऊपर जिन्होंने इनको डिस्ट्रॉय की, उससे बड़ा ही फायदा पहुंचा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप वाजपेयी साहब ने दिखाई वो अपने अंदर एक मिसाल है।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। कीनिया की राजधानी नैरोबी में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों को बंद कर दिया गया है और अमेरिका के सैन्य विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। कीनिया चरमपंथी गुट अलशबाब के हमलों का निशाना रहा है। बराक ओबामा ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा है कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका का चरमपंथ विरोधी रुख पुख्ता होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप एर्दोगान ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों को देश के दक्षिण में हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल अमेरिका के लड़ाकू विमान इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अब हमला करने के लिए करेंगे। साथ ही उनका कहना था कि इंक्रिलिक हवाई अड्डे के इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। इससे पहले शुक्रवार को तुर्की के सैन्य विमानों ने उत्तरी सीरिया में आईएस के ठिकानों पर पहली बार हमले किए थे। एर्दोगान ने इसे आईएस के खिलाफ पहला कदम बताया था। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दौगलू का कहना था कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। तुर्की के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आज सुबह सेना ने सीरिया की सीमा के पास हमले किए, जहां पर हमारी सीमाओं को खतरा है और जहां हमने हमले किए हम 100% सफल रहे। हमले मिसाइलों के जरिए किए गए और हमें सीरिया की सीमा को पार नहीं करना पड़ा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी सेना दे सकती है। ग्रीस के बेलआउट पैकेज पर बातचीत के लिए यूरोपीय संघ के नेता एथेंस पहुंच चुके हैं। यूरोपीय संघ के कर्जदाताओं के साथ सरकारी अधिकारी मुलाकात करेंगे। अलेक्सिस सिप्रास के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। इससे पहले ग्रीस के सांसद यूरोपीय संघ के कर्जदाताओं के नए कड़ी शर्तों पर सहमति दे चुके हैं। नेपाल में आज सीपीएन माओवादी पार्टी द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद का असर देखने को मिला। यहां स्कूल, बैंक और व्यापारी संगठन बंद रहे, वहीं परिवहन पर भी इसका असर दिखाई दिया। सीपीएन माओवादी संविधान के मसौदे का विरोध कर रही है और उसके मुताबिक मसौदा एक पक्षीय है। इस पार्टी का कहना है कि इस मसौदे में जातीय वर्ग जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके लिए माओवादी 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम यानी FCRA के उल्लंघन के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता से तलवाड़ की अग्रिम जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले मुंबई की CBI अदालत ने तीस्ता से तलवाड़ की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद तीस्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। CBI ने तीस्ता से तलवाड़ उनके प्रति जावेद आनंद के खिलाफ FCRA के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया था और फिर उनके घर और दफ्तर पर छापे मारे थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कीनिया की यात्रा पर हैं। कीनिया उनके पिता की मातृभूमि है। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जो कि इथियोपिया में अफ्रीकी संघ के सदस्यों को संबोधित करेंगे। अपनी कीनिया यात्रा से पहले ओबामा ने बीबीसी से खास बातचीत की। इस बातचीत में ओबामा ने स्वीकार किया कि अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण न कर पाने का उन्हें गहरा मलाल है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त कानून नहीं है। ओबामा से जो बीबीसी ने बातचीत की उसमें कई मुद्दों पर सवाल थे। सुनिए प्रगति सक्सेना की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ओबामा कीनिया के दौरे पर हैं। कीनिया चरमपंथी गुट अल शबाब के हमले की त्रासदी से गुजर चुका है और चरमपंथ से निपटने के लिए तैयार भी हो रहा है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि उनके इस दौरे से पूर्व अफ्रीका में चरमपंथ से लड़ने की अमेरिका की प्रतिबद्धता साबित होती है।
What we found is that when we combine blunt talk with engagement,
हमने ये पाया है कि जब हम काम के साथ साफ साफ बात करते हैं तो उससे हमें सिविल सोसाइटी के लिए जगह बनाने और उसे प्रभावित करने के बेहतरीन मौके मिलते हैं, मानवाधिकार के उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के जिसे हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं।
उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अन्य देशों से अपनी साझेदारी पर जोर दे और ये स्पष्ट कर दे कि वे चरमपंथी गुटों से डरते नहीं हैं। दूसरा ये कि पूर्व अफ्रीका में चरमपंथ से लड़ने के लिए अमरीका की कीनिया और युगांडा के साथ साझेदारी बहुत मजबूत है। अपने देश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे अमेरिका में बंदूक पर काबू नहीं पा सके।
If you ask me where has been the one area where I feel that I've been,
अगर आप मुझसे पूछें कि किस क्षेत्र में मुझे सबसे ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो वो ये तथ्य है कि अमेरिका इस पृथ्वी पर सबसे विकसित देश है जहां अक्सर गोलीबारी में लोगों के मारे जाने के बावजूद बंदूकों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त कानून नहीं है।
कीनिया के अन्य देशों से संबंधों के बारे में राष्ट्रपति ओबामा ने साफ तौर पर चीन का उदाहरण लेकर कहा कि चीन अफ्रीका के संसाधनों को पाने के लिए ही इस महाद्वीप में पैसा लगा रहा है और इसी बात को अमेरिका थोड़ा बदलना चाहता है।
We welcome Chinese aid into Africa. We think that's a good thing. We don't want to discourage it. As I've said before,
हम अफ्रीका में चीन की सहायता का स्वागत करते हैं। हमें लगता है कि ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस व्यापार से केनिया, घाना और इथोपिया के आम आदमी को फायदा पहुंचे, सिर्फ अभिजात लोगों और चीन को ही नहीं, जो जाहिर है यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करेगा।
उधर कीनिया में राष्ट्रपति ओबामा के आने से माहौल उत्साहपूर्ण है। आम नागरिकों को लगता है कि उनके इस दौरे से कीनिया और अमेरिका के बीच व्यापार के अवसर बढ़ेंगे।
कीनिया दुनिया के सामने आएगा, सो ये अच्छी बात है कि वो कम से कम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर पहले किया जाता तो बहुत अच्छा होता।
कीनिया की एक आम नागरिक के शब्द। ये बात तो साफ है कि कीनिया यात्रा से राष्ट्रपति ओबामा ने प्रभावशाली विश्व नेता की अपनी छवि को मजबूत किया है, साथ ही अमेरिका के व्यापारिक ताल्लुकात पुख्ता करने और पूर्व अफ्रीका में अमेरिका की मौजूदगी दर्ज कराने की तरफ भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
बराक ओबामा की बीबीसी से बातचीत पर आधारित थी ये रिपोर्ट। रुख भारत का। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय वित्तीय कोड का जो नया मसौदा जारी किया है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक गवर्नर के पद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अधिकार छीन सकता है। क्या है ये अधिकार और क्या इस कदम के पीछे वजह भी हो सकती है, सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
भारत ने हमेशा से आरबीआई गवर्नर के पास ब्याज दरें तय करने का पूर्ण अधिकार रहा है, यानी मौद्रिक नीति तय करने की अहम भूमिका इसी पद से जुड़ी रही है। लेकिन इस नए मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद सरकार के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब ब्याज दरें तय करने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन होगा। इस समिति में 4 प्रतिनिधि सरकार के होंगे जबकि 3 केंद्रीय बैंक से रहेंगे। खास बात यह है कि खुद आरबीआई गवर्नर भी 3 सदस्यों में से एक रहेंगे। हालांकि नए मसौदे के तहत आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत का अधिकार तभी रहेगा जब पक्ष विपक्ष में वोट बराबरी पर हो जाए। लेकिन आरबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि केंद्रीय बैंक में इस मसौदे को लेकर बहुत उत्साह का माहौल नहीं है। उधर बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व कार्यकारी निदेशक आरके बख्शी को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो गवर्नर की भूमिका खासी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा,
इसमें किसी को दो राय नहीं है, न आरबीआई में, न सरकार में, न इकोनॉमिस्ट के बीच में, कि एक कमेटी बनाना एक फॉरवर्ड स्टेप है, जो कि इंग्लैंड में, जो कि अमेरिका में, जो कि ब्राजील में, हर देशों में वो कमेटी की एक अप्रोच चलती है। लेकिन रिजर्व बैंक गवर्नर को कोई वीटो नहीं रहेगी और ये कमेटी रहेगी और 4 लोग गवर्नमेंट से आ रहे हैं, तो एक दिमाग में लोगों के ये बात आ सकती है कि सरकार इस प्रकार से रिजर्व बैंक के इस फंक्शन को प्रभावित कर सकती है।
पिछले लगभग 1 वर्ष से सरकार का आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने को लेकर दबाव सा देखा गया है। सरकार का मत रहा है कि विकास दर बढ़ाने के लिए मुद्रा स्फीति पर आरबीआई का ध्यान कम और ब्याज दरें घटाने पर ज्यादा होना चाहिए। हालांकि गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में आरबीआई ने अपनी नीति पर चलते हुए ब्याज दरों में फैसले को संभल कर ही लिया है। दी टेलीग्राफ अखबार के बिजनेस संपादक जयंत रॉय चौधरी के अनुसार नई सरकार ने इस मसौदे में यूपीए सरकार द्वारा डाला गया एक अहम प्रावधान भी हटा लिया है।
पहले जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें था कि रिजर्व बैंक का गवर्नर के पास एक वीटो पावर रहेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीशन को अगर उसको उसके साथ सहमत ना हो तो वो उसको वीटो कर सकता है, परंतु ये पावर अब हटा दिया गया है उससे। और ये जो दूसरा सेकेंड ड्राफ्ट लाया गया है जिसपे कमेंट्स मांगा है सरकार ने 8 अगस्त तक, उसपे ये प्रावधान नहीं है। तो इससे लोगों को थोड़ा शंका है, डर है कि रिजर्व बैंक की जो पावर्स है उसे हटाया जा रहा है। अब इसमें पॉलिटिक्स जरूर है कि ये हर सरकार मांगी थी, पर जो सरकार अभी है उसको वो ज्यादा जल्दी में है कि उसके हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी की बागडोर थोड़ी बहुत हो।
भारतीय वित्तीय कोड के कानून की शक्ल लेने में अब ज्यादा समय नहीं बचा दिखता है। गौर करने वाली बात यही रहेगी कि इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में बदलाव कितने देखने को मिलेंगे। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
यौन शोषण के आरोपों में घिरे जाने माने पर्यावरणविद आर के पचौरी को टेरी प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को दफ्तरों में यौन शोषण से बचाने के लिए 1997 में दिशा निर्देश दिए थे जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। हाल ही में खबर आई कि केंद्र सरकार ने पीड़ित महिलाओं को खास मामलों में बिना वेतन काटे 3 महीने की छुट्टी देने की बात कही है। तो सवाल ये है कि क्या महिलाओं के लिए दफ्तरों में अपने प्रति हुए बदसलूकी की शिकायत करना अब आसान हुआ है? इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में बहस का यही होगा मुद्दा। मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800 102 7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत प्रशासित कश्मीर की स्थायी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल के निकटतम जिलों रजौरी और पुंछ में अब कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन क्षेत्र में तनाव बाकी है। पुलिस ने रजौरी जिले में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए ईद के बाद कर्फ्यू लगा दिया था। तनाव पिछले दिनों उस वक्त शुरू हुआ था जब कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने सीरिया और इराक में काम कर रहे इस्लामिक स्टेट के झंडों को जलाया था। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के झंडे पर कलमा है, इसलिए रजौरी के मुसलमान क्रोधित हैं और प्रशासन ने दोषियों को पकड़ने के बजाय मुस्लिम युवकों को ही गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में रजौरी को लेकर सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। व्यापार मंडल ने शनिवार को बंद का आह्वान किया है। रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
राजौरी की स्थिति पर घाटी के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने एक साझी बैठक में चिंता जताई और कल घाटी में हड़ताल का आह्वान किया। व्यापारियों का कहना है कि बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने वाले मुफ्ती सईद ने जब से राज्य का कार्यभार संभाला है यहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और दंगों में दोषी पाए जाने वालों को प्रशासन का खुफिया समर्थन मिलता है। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं सईद अली गिलानी, मीरवाइज उमर, शब्बीर शाह और यासीन मलिक ने भी सख्त प्रक्रिया जताई है। भारत समर्थक नेता इंजीनियर रशीद ने राजौरी के मुसलमानों के समर्थन में एक रैली भी की जिसके दौरान बीजेपी, आरएसएस और मुफ्ती सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई।
वहाँ पर जो हिंदू दहशतगर्दी है वो पीक पे पहुंच चुकी है और आज हम वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार की जितनी भी वो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पूछना चाहेंगे कि आप जम्मू के मुसलमानों का इस तरह से आप उनकी इज्जत के साथ, उनकी जानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और कश्मीर का बच्चा बच्चा सियासी वापसियों से बालातर होकर जम्मू के अपने मुसलमान भाइयों के साथ छाना बछाना खड़ा है।
कश्मीर में अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वीएचपी पर स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ी पीडीपी ने आरएसएस के साथ जुड़े गुटों को खुली छूट दे रखी है। आम लोगों को आशंका है कि अगर तनाव को खत्म करने के लिए राजौरी के लोगों के साथ बात न की गई तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं।
अगर ये एक वायलेंस का रुख इख्तियार करेगा तो इसके नाता ये हो सकते हैं कि लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, खून खराबा बढ़ेगा।
पहले एक मखसूस जो मुसलमान इलाके हैं वहाँ से नोट्स उनको इशू हुई कि आप खाली कर दें ये जगह कि वो फॉरेस्ट लैंड है, बट जो हिंदू के एरियाज है उनकी बस्तियाँ हैं वहाँ पर कोई इशू नोट्स नहीं हुई। तो इससे ऑब्वियसली जैसे 2008 में चार्जेड एटमोसफेयर हो गया, कम्युनल जो फिर राइट्स हो गए, तो ऑब्वियसली उससे हालात खराब हो सकते हैं।
सबसे हैरान कुन बात यह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं निर्मल सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिन्होंने मतलब ये झंडा जलाया, फ्लैग जलाया था जिस पर मतलब कलिमा तैयबा लिखा हुआ था, कि उनको नहीं मतलब पकड़ा जाएगा, जबकि मतलब वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए।
गौरतलब है पाकिस्तानी सीमा के निकटतम जिला रजौरी में हिंदुओं की जनसंख्या 35% के आसपास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तनाव की स्थिति ईद के दिन शुरू हुई जब ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने भारत विरोधी नारे लगाए। दूसरे दिन कुछ हिंदू युवाओं ने इराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट के झंडे जला दिए, जिस पर मुस्लिम समुदाय क्रोधित हो गया क्योंकि इस झंडे पर मुसलमानों का कलिमा लिखा है। रियाज मसरूर, بی بی سی سری نگر.
26 جولائی کو کرگل یدھ کو سماپت ہوئے 16 سال ہو جائیں گے. بھارت میں اسے وجے دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے. 1999 کے کرگل یدھ میں جہاں سینکڑوں بھارتی سینک مارے گئے یا گھائل ہوئے، اس نے دکشن ایشیا میں سامرک اور سرکشا درشٹی سے بھی بھاری پربھاؤ ڈالا. 1999 کے کرگل یدھ کو یاد کر رہے ہیں ونیت کھرے آج کی ویویچنا میں.
جگہ گارکون گاؤں، کارگل کا بٹالک سیکٹر، سال 1999 مئی کے شروعاتی دن. تاشی نامگیال اپنے گھر سے تھوڑی دور گم ہو گئی یاک کو ڈھونڈنے نکلے تھے کہ ان کی نظر کالے کپڑے پہنے 6 بندوق دھاریوں پر پڑی جو پتھروں کو ہٹا کر رہنے کی جگہ بنا رہے تھے. انہوں نے یہ بات ستھانی بھارتی سینکوں تک پہنچائی. جلد ہی سینا کی اور سے ایک دل کو جانچ کے لیے بھیجا گیا. اس طرح کارگل میں چل رہی گھسپیٹھ کا پتہ چلا. بھارتی سینا کو گھسپیٹھیوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اور شروعات میں بھارت کی اور سے کہا گیا کہ چرم پنتھیوں کو جلد ہی نکال دیا جائے گا، لیکن جلد صاف ہو گیا کہ بھارتی سینا کا سامنا پاکستانی سینکوں سے تھا. اس وقت کے بھارتی ودیش منترالے کے پروکتا آر ایس جسل،
آر ملٹری ایکشن ان دی کارگل سیکٹر وچ ہیز بین انیشیٹڈ فار دس پرپس،
کارگل میں ہماری کارروائی چل رہی ہے. جب تک آکرمنکاریوں کو بھگا نہیں دیا جاتا تب تک یہ کارروائی جاری رہے گی.
بھارتی ٹیلی ویژن اتہاس میں کارگل پہلی لڑائی تھی، اس لیے اس کے چتر دیش کے گھر گھر میں پہنچ رہے تھے. پترکار برکھا دت بتاتی ہیں،
مجھے یاد تھا کہ ہم 4 لوگ تھے، میں، میرا کیمرہ مین اجمل جامی اور 2 اور ایک گورو ساونت، وی کے ششی کمار. ہم ایک گاڑی میں بس گھومتے رہتے تھے. وہ گاڑی کی شیلنگ ہو گئی، پتہ نہیں کتنے راتیں ہم نے پتھر کے، بڑا سا پتھر بولڈر ہوتا ہے، پتھر کے پیچھے رات بتائی. یہ آپ یاد کریں جو سب بھول جاتے ہیں، دس واز بیفور دی ایج آف او بی وینس، جو ہیلی کاپٹرز ڈیڈ باڈیز لے جاتے تھے واپس، ان سے ہم کہتے تھے پلیز پلیز کر کے، پلیز ہماری ٹیپس لے جائیے.
گھسپیٹھیوں نے ان بھارتی چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا جنہیں بھارتی جوان سردیوں میں خالی کر دیا کرتے تھے. پاکستان کی اور سے گھسپیٹھ کی خبر بھارتی پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کی 1999 کی لاہور یاترا کے چند دنوں بعد ہی آئی تھی.
My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning.
I have underscored to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship. Once we achieve a final settlement.
Pakistan aakhir kya hasil karna chahta tha? پاکستانی سینا کے پورو چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں کارگل میں پاکستانی سینا کی بھومکا کے بارے میں وستار سے لکھا ہے. انہوں نے بی بی سی سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، لیکن پاکستان کے جیو ٹی وی سے بات چیت میں انہوں نے کہا،
مشرف صاحب نے جو مقصد اعلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ کارگل کرنے کی وجہ سے سیاچن کی سپلائی لائن کٹ جائے گی، ہندوستان کی فوج کو سیاچن سے نکلنے پر ہم مجبور کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا دباؤ پڑے گا انٹرنیشنل قسم کا کہ یہ اس قسم کی جنگ دو ایٹمی ریاستوں میں پھیل سکتی ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ کشمیر پر معنی خیز مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا.
حملے کے وقت لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں اونچے پد پر تھے، لیکن انہیں بھی لائن آف کنٹرول پر چل رہی گھسپیٹھ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی. ان کے مطابق بھارتی چوکیوں پر قبضہ کرنے کی یوجنا میں مکھیہ روپ سے 4 لوگ شامل تھے، تب کے سینا پرمکھ جنرل پرویز مشرف، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ محمد عزیز، لیفٹیننٹ جاوید حسن اور لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد. ان کے انوسار زیادہ تر کور کمانڈروں کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا.
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی ایک ادارے کے طور پر اس سے ناواقف تھا، ہو نہیں سکتا. میرا اندازہ ہے کہ گلگت میں اتنی فوج کی حرکت، توپوں کا لے جانا، ایمونیشن کا لا کر رکھنا، اتنی سپاہ کی موومنٹ آئی ایس آئی کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی. میں تو خود حیران ہوں کہ انڈین انٹیلیجنس کا یہ اتنا بڑا فیلئر تھا کہ ان کو پتا نہیں چلا.
بھارتی جوانوں کے لیے استھتی کٹھن تھی. گھسپیٹھیے اونچی پہاڑیوں پر بھاری ہتھیار، گولہ بارود لے کر بیٹھے تھے، اور بھارتی جوانوں کے لیے گولیوں کی بوچھار کے بیچ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچنا بے حد چنوتی پورن تھا. اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل آر کے سہنی بتاتے ہیں،
اگر آپ بھی آج ادھر جائیں اور جو بھی کسی دوسری کسی فوج کو لے کے جائیں تو وہ اچمبا کرتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر اٹیک کرنا ممکن بھی تھا. ان اٹیکس کے اندر، ان آپریشنز کے اندر جو کیجولٹیز ہوئیں، वो ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। मेरी रेजिमेंट के जो 13 जैक राइफल्स के थे जिनको पीवीसी मिला था, इनमें से पलटन में से लोग जो ऊपर गए, तो इन लोगों ने इतनी कैजुअलिटी सफर करी। आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक कंपनी चल रही हो जिसके अंदर 60 या 70 या 80 आदमी हो, उनमें से कैजुअलिटीज हो जाए, कोई 30-40 की कैजुअलिटीज हो जाए, इधर किल्ड और वुंडेड, इट इज हेल ऑफ अ लॉट। और उनकी कैजुअलिटीज के बाद फिर दूसरे आदमी चढ़ते गए ऊपर। और मैं ये कहूंगा ये सिर्फ एक मुद्दा जिसके अंदर हो, ये अपना रेजिमेंट का कंट्री का मुद्दा हो और दिमाग में ठान ली हो कि इस बार ऊपर जाके ही रहेंगे, चाहे जो भी काम आ जाए, चाहे जो भी गलती प्रॉब्लम आ जाए, तो ये बड़ी ही जबरदस्त स्पिरिट है।
लड़ाई का दायरा फैलना शुरू हो गया था। मृत भारतीय सैनिकों की बढ़ती संख्या ने सरकार को कोई ठोस निर्णय लेने पर विवश किया। 25 मई को दिल्ली की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में 30 साल में पहली बार पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले का निर्णय लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आर के साहनी,
उनकी जो बम्बार्डमेंट थी वो बड़ी एक्यूरेट थी, और उनके जो लॉजिस्टिक बेसिस के ऊपर जिन्होंने इनको डिस्ट्रॉय की, उससे बड़ा ही फायदा पहुंचा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप वाजपेयी साहब ने दिखाई वो अपने अंदर एक मिसाल है। मैंने उनके चेहरे पे कभी भी शिकन नहीं देखी। मैंने खुद कई अटेंड करी थी वो मीटिंग जो थी ऑपरेशन रूम के अंदर। मैंने ऐसा सिर किस्म का लीडर, ऐसा अनस्लैपेबल लीडर, ऐसा दृढ़ विचार का लीडर जो है पॉलिटिकल लीडरशिप मैंने कोई सुनी भी नहीं अपने हिंदुस्तान के अंदर। और मेरे ख्याल से वो अपने अंदर एक मिसाल है।
पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमलों को बेहद गंभीर बताया। इस दौरान 2 भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया गया। परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों के बीच चल रही गोलीबारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ने लगी। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद,
ये वाकया होता है तकरीबन 1 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो एटॉमिक टेस्ट हुए थे। कंसर्न उस वक्त था कि ये कश्मीर या कारगिल जो है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना बन जाए। जो कम अज कम प्रोग्रेसिव लिबरल सर्कल था पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपना देखना चाह रहे हैं, उनमें जाहिर है कि उस वक्त कंसर्न था कि ये बड़ा इरेस्पॉन्सिबल एक्ट है अगर इसको इनिशिएट पाकिस्तान ने किया है। अब जाहिर है कि मुशर्रफ साहब ने किया, उनके एक अपने एक पावर एम्बिशंस थे जो उन्होंने पूरे किए 1999 की कूव में, और उसके बाद 9 साल का जो उनका रूल है उसमें भी आप देखें वो शख्स एक मिस एडवेंचर करता है जिसका ह्यूमन और मटेरियल लॉस और डिप्लोमेटिक लॉस पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर था। फिर वही शख्स जो है पावर में आके आगरा पहुंच जाता है, तो डुअलिटी की आप एक्सटेंट देखें।
भारत में बढ़ते गुस्से और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री सरताज अजीज भारत पहुंचे।
जो हमसे टकराएगा,
जो
हमसे टकराएगा।
I had no illusion of resolving the current difficulties in a single day.
ये मामला एक दिन में सुलझने वाला नहीं था, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूँ।
भारत की तरफ से भी स्थिति को संभालने की कोशिशें चल रही थीं। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक बताते हैं,
करगिल वॉर जब हुआ तो मियां नवाज शरीफ का मुझे 10 बार फोन आया, और हर बार मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को उस फोन के बारे में बताया कि देखिए मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। अटल जी ने मुझसे कहा कि आप जाइए लाहौर और वहां से फ्लाई करके कैसे भी इस्लामाबाद जाइए और बात करके आए। फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आपत्ति कि वैदिक साहब को सब जानते हैं, लाहौर जाएंगे और हल्ला मच जाएगा, भारत सरकार कोई दब गई है, डर रही। तो इन वक्त में मैंने जाना कैंसिल किया और वीजा लगा लिया था, जाने की तैयारी होगी।
आखिरकार भारत और पाकिस्तान बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए बातचीत पर सहमत हुए। भारतीय सेना के हमलों के कारण उसकी स्थिति मजबूत होनी शुरू हुई। भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई के बाद घुसपैठियों को भगाते हुए तोलोलिंग, टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा किया। भारतीय सैनिकों के लौटते शवों ने कारगिल की लड़ाई को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। जुलाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस लौटना शुरू किया। इस दौरान भारत की ओर से चीन में मौजूद जनरल परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान की बातचीत के क्लिप को सबूत के तौर पर पेश किया गया कि पाकिस्तानी सेना इस लड़ाई में शामिल थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मदद की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा न हुआ। आखिरकार 26 जुलाई को कारगिल युद्ध का अंत हुआ। कारगिल युद्ध का पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर हुआ? प्रोफेसर इश्तियाक अहमद,
उसका जो इवेंचुअल आउटकम था वो एक किस्म की ह्यूमिलिएशन थी पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ हुकूमत ने एक बहुत मीनिंगफुल बायलैटरल पीस प्रोसेस शुरू किया हुआ था हिंदुस्तान के साथ, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हो रही थी, कंपोजिट डायलॉग की वहाँ इब्तदा हुई थी, वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए थे और एक बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड उनका एक जेस्चर था कि वो मीनार पाकिस्तान पे खड़े होके पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात की उन्होंने। तो ये तमाम चीजें जो 90s में हो रही थी, अब वही ख्वाहिश हम इस वक्त लेके बैठे हुए पाकिस्तान में। अगर मुशर्रफ साहब का कोई रोल बनता है तो उनको कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने इतने लोग मरवा दें और कुछ हासिल भी ना हो और उसके बाद आप पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के अपना एक सबसे बड़े क्लेमेंट बन के बैठे रहें।
भारत में भी कारगिल रिव्यू समिति बनी और कई सुझाव दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल आर के साहनी,
सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली थी वो CDS की बोली थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके ऊपर अभी तक कोई भी किसी किस्म का काम नहीं किया गया, जो कि मेरे ख्याल से मॉडर्न जमाने के अंदर किसी भी कंट्री को एक CDS के ना होने की जो है वो कमी है, वो हमको स्ट्रेटजिकली और टैक्टिकली इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
उधर कारगिल युद्ध पर जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना है,
कारगिल में NLI ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो स्काउट्स से जैसे मुजाहिद बटालियंस हैं, इनको सेकंड लाइन फोर्सेस कहते हैं हम, ये सेकंड लाइन फोर्सेस थी जिन्होंने ये गले से पकड़ लिया था हिंदुस्तान, तो वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी। लेकिन बदकिस्मती इस मिलिट्री विक्ट्री को एक पॉलिटिकल डिफीट में कन्वर्ट कर दिया गया, बदकिस्मती।
कारगिल में मारे गए जवानों की प्रतिमाएं, उनके नाम पर पार्क आपको भारत के कोने कोने में मिलेंगे। जब कारगिल युद्ध चरम पर था तो हजारों गोले रोज दागे जाते थे। रेड क्रॉस के मुताबिक इस युद्ध के कारण पाकिस्तान प्रशासित इलाकों में करीब 30,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा और भारत प्रशासित इलाकों में करीब 20,000 लोगों पर असर पड़ा। उनमें से कई लोग आज भी कारगिल युद्ध को भय और दहशत के साथ याद करते हैं। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
करगिल युद्ध पर यह थी विवेचना और अब बात खेल समाचारों की। आदेश कुमार गुप्त, क्या हो रहा है?
जी देखिए, अगर रशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज मिला जुला दिन रहा। महिला एकल वर्ग में भारत की तन्वी लाड रूस की एवगेनिया कोत्सिस्काया से कड़े संघर्ष के बाद 26-28, 21-13, 21-19 से हारकर बाहर हो गई। लेकिन पुरुष युगल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल भारत के मनु अत्री और 20 सुमित रेड्डी की जोड़ी को रूस की विरोधी जोड़ी के खिलाफ वॉकओवर मिला और वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। पुरुष एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल भारत के अजय जयराम ने 5वीं वरीयता हासिल मलेशिया के वेई चोंग फेंग को 21-15, 21-13 से हराया और मिश्रित युगल वर्ग में अक्षय दिवालकर और प्राजक्ता सावंत की जोड़ी ने फ्रांस के रोना लाबार और एमिली लेफिल को 21-18, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। उधर दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन आज बारिश की भेंट चढ़ गया। उल्लेखनीय कि दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में अभी तक 61 रन बने जबकि उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया, लेकिन पहली पारी के आधार पर अभी भी वो 17 रन से पीछे है। उधर अगर ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच चेन्नई में खेले जा रहे अनऑफिशियल टेस्ट मैच की बात की जाए तो आज तीसरे दिन भारत ए ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे। अब भारत ए के पास 154 रनों की बढ़त है, उसके 7 विकेट बाकी हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
BBC समाचार। कीनिया की राजधानी नैरोबी में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बराक ओबामा ने BBC से खास बातचीत में कहा है कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका का चरमपंथ विरोधी रुख पुख्ता होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अर्दोगान ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका के लड़ाकू विमानों को देश के दक्षिण में हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रीस के बेलआउट पैकेज पर बातचीत के लिए यूरोपीय संघ के नेता एथेंस पहुंच चुके हैं। यूरोपीय संघ के कर्जदाताओं के साथ सरकारी अधिकारी मुलाकात करेंगे। नेपाल में आज CPN माओवादी पार्टी द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद का असर देखने को मिला। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। अब भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे अगले कार्यक्रम घटना चक्र में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक मोहन लाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।